Okay, I have been given this pleasure of introducing you to this wonderful person who will be taking this session, that is role of divine intellect for a healthy and successful business life. Dr. Sriman Kumar Sahu is a diabetologist and then is MBBS from Sambalpur University, Odisha, diploma in anesthesia from Mumbai University and a master's and diploma in diabetology from Annamalai University, Tamil Nadu. Dr. Sahu joined J. Vattumal Global Hospital and Research Center in 1991, and after working as an assistant surgeon in the government health sector for 6 years, he single-handedly handled the Department of Anesthesia for over a decade before turning his attention to diabetes. Dr. Sahu has a special interest in helping diabetic persons lead a healthy and fulfilling life. Dr. Sahu is assisted by Dr. Savita, a graduate in homeopathy, and Sister Indu Chandramani, a nurse.
Om Shanti. It is a privilege, really, being a doctor, to address such a group. जिसको हिंदी में हम कहते हैं सौदागर, अंग्रेजी में बिजनेसमैन कहा जाता है, परंतु ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत लेट जब विदेशी लोग आए ये सब यूज कर रहे हैं, परंतु हमारे भारतवर्ष सबसे प्राचीन है और हमारे भारतवर्ष में जो बिजनेस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? सौदागर। तो लोग कहते हैं डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, मैं कहूंगा यू आर इक्वल टू गॉड, क्योंकि ताली तो बजाइए। अरे देखिए, भगवान को भी रत्नागर, सौदागर, जादूगर कहा जाता है, तो भगवान को सौदागर कहा जाता है, तो आप सभी सौदागर हो, तो इसलिए यू आर इक्वल टू गॉड, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, बट यू आर इक्वल टू गॉड। सो आई एम मीटिंग सच ए ऑगस्ट गैदरिंग, इट इज रियली ए प्राउड प्रिविलेज फॉर मी। सबसे पहले तो आरावली पर्वतमाला में इस सुंदर प्राकृतिक परिवेश में आप सभी का स्वागत करते हुए, अभी लंच के बाद यू आर टोटली रिफ्रेश्ड नाउ, रिफ्रेश्ड, सो इस यू ए वेरी गुड आफ्टरनून एंड ए ग्रैंड वेलकम। जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता है, है ना? नहीं, मैं एक प्रश्न आप सभी को पूछता हूं, दोज हु आर रियली सक्सेस इन लाइफ, they are successful in life, please raise your hands. इतने कम। अच्छा, those who are interested to become successful in life, जो जीवन में सफल बनने के लिए इच्छुक हैं, almost सभी। जीवन में हम सभी चाहते हैं हम सफलता के सितारे बने, we should be the star of success in our life, परंतु सफलता और असफलता इसका क्या कारण है? क्यों कई लोग जीवन में सफल बनते हैं, कई लोग असफल हो जाते हैं? इसका भी कुछ कारण है, जरूर कुछ कारण होगा ना। आप सभी पिछले 2-3 दिन से बहुत कुछ बातें सुन चुके हैं और भी सुनते रहेंगे, परंतु मैं इनवाइट करूं आप सभी से, कोई भी, कैन यू टेल सम टिप्स, कोई व्यक्ति अगर जीवन में सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस, चाहे मेडिकल साइंस, चाहे कोई इंजीनियरिंग, कोई भी अपने प्रोफेशन में सफलता का क्या राज है? कुछ क्वालिटीज कई लोगों में हैं, वो किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाते हैं तो सफल हो जाते हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज है जीवन में हर कदम में हमें सफलता दिलाती है? ईमानदारी, मेहनत, गुड, पॉजिटिव थिंकिंग, डेडिकेशन, यस यस यस, विजडम, यस, टीम वर्क, बिहेवियर, वेरी गुड, प्लानिंग, एटीट्यूड, ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंड फेल्योर बिजनेसमैन, आई एम समराइजिंग फ्यू, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी टोल्ड, दोज हु आर सिंसियर इन लाइफ इन एवरीथिंग they become success, but those who are insincere, they fail. those who are hardworking, they succeed. Those who are lazy, they fail. Those who are honest, they succeed in life. Those who are dishonest, they fail. Similarly, those who are experienced, किसी भी कार्य में कोई भी कार्य आपको अगर अनुभव है वो कार्य बहुत अच्छी रीति से आप कर सकते हो, अनुभव ही नहीं है तो नेचुरली फिर उसमें फेल्योर होता है. इस प्रकार फार साइटेड, जिसको दूरदर्शिता कहा जाता है, जिसमें फार साइटेडनेस है सफल हो जाता है, लैक ऑफ विजन फेल हो जाता है. लक्की, सम पीपुल आर बॉर्न लक्की. किसी का बाप ऑलरेडी बिजनेस में है, ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बेटा आके जस्ट उसको संभालता है, हेल्प करता है एंड ही बिकम्स द सक्सेसर. कई लोग एकदम जीरो से, एकदम जीरो प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं. तो सम आर बॉर्न लकी एंड सम पीपुल कहीं भी कुछ भी करते हैं, कहते हैं मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं क्या करूं. सिमिलरली नॉलेजफुल एंड इग्नोरेंट, कोई भी कार्य के लिए नॉलेज चाहिए. जो भी कार्य करें हम, उसमें अगर हमारे पूरा ज्ञान है तो वो कार्य को अच्छी रीति से कर सकते हैं. अगर नॉलेज नहीं है नेचुरली फेल होते हैं. इस प्रकार ट्रूथफुल, जो हमेशा सच बोलता है, कभी मिलावट झूठ ये सब नहीं करता है, चीटिंग नहीं करता है, नेचुरली वो सक्सेस होता है. एक सुंदर कहावत है, यू कैन बी फुल सम पीपुल फॉर सम टाइम्स बट यू कैन नॉट बी फुल ऑल द पीपुल फॉर द ऑल द टाइम. तो जीवन में जो सच्चाई जीवन में धारण करता है वही वास्तव में जीवन में सदा के लिए सक्सेस होता है. दीज आर द फ्यू क्वालिटीज फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. परंतु मैं आप सभी को नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये सब क्वालिटीज सभी को पता है परंतु क्यों जीवन में धारण नहीं हो पाती है. कौन नहीं चाहता है अच्छा बनूं, अच्छा करूं, सब कुछ मेरे जीवन में ये सारी क्वालिटीज आ जाए, लेकिन नहीं हो पाता है. व्हाट इज द रीजन, क्यों, हाउ टू डेवलप. जो जीवन में ये सारी क्वालिटीज को जीवन में अपना लेता है ही बिकम्स ए सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ व्हाट एवर फील्ड ऑफ वर्क ही हैज. परंतु जिसके जीवन में ये सब क्वालिटीज, और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, मैं तो फ्यू, आई हैव जस्ट इनुमिनेटेड फ्यू वंस. सी आई हैव ब्रॉट ए प्रेजेंटेशन फॉर यू, एक सुंदर सौगात लेके आया हूं आपके लिए. डिवाइन इंटेलेक्ट फॉर सक्सेस इन बिजनेस. देखिए ये सब जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं, वास्तव में ये सब जिसकी बुद्धि डिवाइन बन जाती है ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली उनमें आ जाती है. सो ये सब क्वालिटीज को पाने के लिए वास्तव में और भी बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें आवश्यक है. ये सब क्वालिटीज तो आपको बताया, और भी कुछ क्वालिटीज जीवन में चाहिए, मोस्ट वैल्यूएबल. तीन चीजें बताइए. ऑनेस्टी, गुड. और तीन चीजें, तीन बातें, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं. हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एवरीबॉडी वांट्स, थ्री वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ. सिमिलरली और तीन बातें बताइए. हेल्थ बताइए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बता दिया, और तीन बातें, तीन बातें बताइए, तीन बातें. द थ्री थिंग्स आर प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. ये भी तीन चीजें जीवन में सभी चाहते हैं. आज तीन तीन की बात कराऊंगा. हमारी दादी जानकी जी से कभी मिले देखना, दो दो की बात, तीन तीन की बात, चार चार की बात सुनाएगी, कितने सारी बातें सुना देगी. आज मैं आपको तीन तीन की बात सुनाऊंगा. तो देखिए, प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, दीज आर द थ्री मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन आवर लाइफ. जीवन में हर एक चाहता है शांति. आपके पास कितने धन दौलत हो, गाड़ी मोटर महल सब कुछ हो, कितने भी डिग्रियां हो, कुछ भी हो, घर में जाते ही रोज धम धड़ाम, एकदम बिल्कुल शांति नहीं है, अच्छा लगेगा. हर एक व्यक्ति शांति चाहता है. सिमिलरली प्यूरिटी, प्यूरिटी मीन्स क्लीनलीनेस, स्वच्छता, मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वपन सब में स्वच्छता. हर एक को अच्छा लगता है, पवित्र व्यक्ति, पवित्र स्थान, पवित्र वातावरण, किसको अच्छा नहीं लगता है. और प्रॉस्पेरिटी, जीवन में सब समृद्धि सभी चाहते हैं. ये तीन चीजें हम सभी चाहते हैं. और ये बाजार में कहीं मिलेगा, कहीं जाके खरीद के लाएंगे, कितना भी पैसा दो मिलेगा, कहां से, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, किसको प्रार्थना करते हैं? तो क्या भगवान ये कोई चीज है, ले भाई तू आधा किलो, ले भाई एक किलो, भगवान दे देंगे? कैसे देंगे भगवान? ये सब चीजें भगवान देते हैं हमारी बुद्धि को दिव्य बनाकर, थ्रू डिवाइन इंटेलेक्ट। जब हमारी बुद्धि डिवाइन बन जाती है तो ही ये सब क्वालिटीज हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आती है। तो देखिए आज कितने प्रकार की बुद्धि है दुनिया में, मनुष्य की जो बुद्धि है कितने प्रकार के हैं? मोस्टली आई कैन कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स, वन इज लौकिक इंटेलेक्ट, द अदर इज द डिवाइन इंटेलेक्ट। लौकिक इंटेलेक्ट एंड डिवाइन इंटेलेक्ट, लौकिक और अलौकिक बुद्धि। आज दुनिया में कोई बहुत शार्प, बहुत शार्प, उसको सारी कुछ याद है और जनरल नॉलेज में एकदम टफर, किस देश में कौन प्राइम मिनिस्टर है, क्या हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन टेल। किसी किसी का दे आर बॉर्न इंटेलेक्ट। मेरा एक दोस्त था, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब तक उसका साइकिल भी नहीं था, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स थे सभी के गाड़ी के नंबर, फोन नंबर बाय हार्ट, जस्ट बताओ फट से बता देगा, सो शार्प। कई लोग ऐसे इंटेलेक्ट होते हैं, वो लौकिक इंटेलेक्ट है। परंतु डिवाइन इंटेलेक्ट क्या चीज है? डिवाइन इंटेलेक्ट वो इंटेलेक्ट है जिससे आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आपको समझ में आएगा। जीवन में आप सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, मन में सदा अच्छा विचार आप लाने के लिए कंट्रोल कर पाएंगे, सदा खुश रहने के लिए आपकी बुद्धि काम करेगी, सदा हर वक्त आपको क्या करना क्या नहीं करना सही डिसीजन ले पाएंगे। वो बुद्धि को हम कहते हैं डिवाइन इंटेलेक्ट, जो कि वेरी प्योर एंड क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर है। वो डिवाइन इंटेलेक्ट वास्तव में क्या है, मैं आपको बताने से पहले आपको बताऊंगा कि पहले व्हाट इज इंटेलेक्ट, ये बुद्धि क्या चीज है। हम सारे दिन कई बार बुद्धि के बारे में बात करते हैं, परंतु ये चीज है क्या? और एक सुंदर चीज है, मैं आपको बताता हूं। देखिए किसके मन में एक बहुत सुंदर सुविचार है, पढ़िए। हे ईश्वर, मुझे इतना भी नीचे ना गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना भी ऊपर ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। कितना एक सुंदर विचार है। एक छोटी बच्ची प्रार्थना कर रहा है भगवान को, हे प्रभु मुझे इतना भी ऊंचा मत उठाओ कि आप पुकारो कि मैं नहीं सुन पाऊं, इतना भी नीचे ना गिराओ कि मैं पुकारूं और आप सुन ना पाओ। ये कहां से विचार आ रहा है, कौन विचार कर रहा है? ये हमारे मन में ये विचार आता है। तो व्हाट इज माइंड देन? मन क्या है, बुद्धि क्या है? आप किसी भी डॉक्टर को भी पूछिए जो मेडिकल साइंस पढ़े हैं, न्यूरो साइंस पढ़े हैं, जैसे ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हम सभी जानते हैं। बॉडी का पुर्जा पुर्जा हम काट कूट करके पूरा खोल दिए हैं, ब्रेन फ्रेंड सब खोल के देखे हैं, ऐसा मन कहां कोई चीज है हमने देखा नहीं, ना कोई बुद्धि कहां है, इंटेलेक्ट कहां क्या चीज है हमने कभी देखा नहीं। तो क्या चीज है ये दोनों, क्या चीज है? देखिए जो ब्रेन हम देखते हैं, इट इज ए फिजिकल ऑर्गन। क्या ये ब्रेन ये सोचना, ये डिसीजन लेना, अच्छा बुरा सोचना डिसीजन लेना, ये सब क्या ब्रेन करती है? नहीं नहीं, ये ब्रेन तो वास्तव में एक कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन हर एक कंप्यूटर को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। देखो छोटू बच्चू चड्डी भी पहना नहीं आया है तो भी चला रहा है लैपटॉप। कहने का मतलब है कि ब्रेन इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को चलाने वाला तो कोई चाहिए ना, तो कौन चलाता है? आप इस चित्र को अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? एक मिरर में बंदर देख रहा है, सोच रहा है इसका पीछे तो कोई नहीं है, झांक के बार बार देख रहा है, कहीं चला तो नहीं गया, इधर उधर देख रहा है। फिर हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ हु एम आई? जीवन में हम बहुत बातें तो जानते हैं, परंतु कभी ये प्रश्न अपने आप को हम पूछे हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं? पूछे हैं आप? कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता सचमुच। वास्तव में ये जो शरीर बाहर देख रहे हैं, क्या ये शरीर हम हैं? अभी तक तो दो तीन दिन हो गया, आप सभी को ये पाठ तो पक्का कर दिया गया होगा, क्या ये शरीर है हम? ये शरीर जो इन आंखों से जो हम देख रहे हैं, इट इज जस्ट द फिजिकल बॉडी इज जस्ट द पार्ट वी विजुलाइज थ्रू आवर ग्रॉस आइज. इन आंखों द्वारा जो ग्रॉस चीज देख रहे हैं ये शरीर है, परंतु व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस बॉडी डू नो, इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड फ्लैश. हड्डी मांस का समाहार ही है ये शरीर, इसमें कुछ भी नहीं है. आप कभी ऑपरेशन थिएटर में आओ, मैं दिखाऊंगा अंदर क्या क्या चीज है. कफ, मल, मूत्र, रक्त, पित्त, बाहर से खाली एकदम सुंदर पॉलिथीन जैसा एक चमड़ी ढकी हुई है, बस अंदर तो सारी गंदगी भरी पड़ी है. तो वास्तव में ये शरीर की वास्तविकता यही है. तो देखिए, आज कोई व्यक्ति को हम लिविंग कहते हैं, कई व्यक्ति को हम डेड कहते हैं. दोनों के आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पांव है, सब कुछ है, फिर भी किसको लिविंग कहा गया है, किसको डेड कहा गया है, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या दोनों में अंतर है? कुछ अंतर है. जो लिविंग जिसको कहते हैं, ही इज कॉन्शियस, उसमें एक चेतना शक्ति है, वो जागृत है, वो रेस्पॉन्ड करता है. जो डेड है, अनकॉन्शियस, टोटली नो कॉन्शियसनेस. सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस देन? आप साइंटिस्ट लोगों को भी पूछिए, दे कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज कॉन्शियसनेस, पता ही नहीं है, क्योंकि बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गान नहीं है जो कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाता है. ओनली स्पिरिचुअल साइंस कैन टीच यू व्हाट इज दिस माइंड, व्हाट इज इंटेलेक्ट, व्हाट इज कॉन्शियसनेस. नोबडी कैन टीच यू. कोई भी हम मेडिकल साइंस में नहीं पढ़े हैं कहीं भी. सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है बेचारा. दूसरा क्या कर रहा है? ये कोई डेड बॉडी कर सकता है? ऐसा कर सकता है? सो दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस. सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? द कॉन्शियसनेस मीन्स द पावर टू थिंक, पावर टू जज, पावर टू डिसाइड, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू रिमेंबर एंड फॉरगेट, फीलिंग ऑफ पेन एंड प्लेजर, स्लीपिंग, ईटिंग, ट्राइंग, लविंग. ये सब क्वालिटीज जो बता रहा हूं, ये सब कॉन्शियसनेस के ही गुण है. सोचना, निर्णय करना और जज करना और अच्छा बुरा डिस्क्रिमिनेट करना, याद करना, भूल जाना, सुख दुख अनुभव करना, सोना, जागना, सुप्ति, जागृति, चेष्टा करना, प्रयास करना, ये कोई डेड चीज नहीं कर सकता है. तो देखिए, ये सब कॉन्शियसनेस की निशानी है. सो कॉन्शियसनेस क्या है? चेतन शक्ति, एक मेटाफिजिकल एनर्जी है. इट मैनिफेस्ट थ्रू द फिजिकल बॉडी. एक होता है भौतिक चीज जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, इसका लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं. परंतु एक है अभौतिक चीज, मेटाफिजिकल, जो कि अभौतिक है, जिसको हम हाथ से ना पकड़ सकते हैं, ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ना टेलीस्कोप से देख सकते हैं. तो चेतना शक्ति, आत्मा, एक ऐसी शक्ति है, जैसे आप बिजली की शक्ति को देख नहीं रहे हो इन आंखों से, आप इसका मैनिफेस्टेशंस को देख रहे हो. लाइट है, साउंड है, तो आप कह रहे हो यस देयर इज इलेक्ट्रिसिटी. ऑल ऑन ए सडन ये सब बंद हो जाता है, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चली गई. लेकिन आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी को? एक व्यक्ति अभी अभी बोल रहा है, खा रहा था, पी रहा था, हंस रहा था, बहुत मौज कर रहा था, एक सेकंड में ठप हो गया, वही आंखें, वही हाथ, वही सब सब साइलेंट हो गया. कहेंगे इसके अंदर जो चेतना शक्ति थी चली गई. सो द कॉन्शियसनेस इज अ मेटाफिजिकल एनर्जी दैट मैनिफेस्ट थ्रू द फिजिकल बॉडी. ये बॉडी मैं बता रहा था एक हड्डी मांस का पुतला ही है, परंतु इसमें देखिए एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो हम सभी क्या बन जाते हैं? एक जीवात्मा. इस शरीर को जीव कहा जाता है, शरीर को ह्यूमस कहा जाता है, मिट्टी का पुतला कहते हैं. ह्यूमस माना मिट्टी. इसमें आत्मा जब प्रवेश करती है बींग, तब वी आर कॉल्ड ह्यूमन बींग. एक हड्डी मांस का पुतला शरीर में, जब एक कॉन्शियस एंटिटी आत्मा प्रवेश करती है, तभी हम ह्यूमन बींग बनते हैं. और हम सभी वास्तव में एक एक स्पिरिचुअल बींग है, एक एक आत्मा है, एक ज्योति स्वरूप, एक डिवाइन लाइट एंड माइट है. और हम सभी वी आर मैनिफेस्टिंग थ्रू दी फिजिकल बॉडीज. ये शरीर हमारा एक साधन है जिसके थ्रू वी आर मैनिफेस्टिंग. जैसे खाली इलेक्ट्रिसिटी किस काम का है? जब एक बल्ब के थ्रू पास करता है, देन ओनली वी गेट द लाइट. सिमिलरली आत्मा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, देन इट मैनिफेस्ट. सो वी आर लिविंग इन द फिजिकल बॉडीज. और आत्मा देखिए कैसे निकल जाती है. देखिए आत्मा निकल गई, देखिए डेड बॉडी से निकल गई, फिर एक शरीर में प्रवेश कर गई। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं जन्म लेके, और जन्म मरण चक्र चलता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये शरीर एक ड्रेस जैसा ही है, जैसे एक ड्रेस दोस्तों फट जाता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर एक नया ड्रेस पहनते हैं। सिमिलरली आत्मा जब ये शरीर पुराना हो जाता है, फट जाता है, इसको चेंज करके फिर नया शरीर में प्रवेश कर जाती है। एंड ऑल ऑफ अस वी आर एक्टर्स। ये संसार रूपी रंगमंच पर शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड द वर्ल्ड इज अ ड्रामा। ये संसार में हम सभी एक्टिंग ही कर रहे हैं। इस जन्म में कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, अगले जन्म में सब चेंज हो जाएंगे। इट इज चेंजिंग एंड चेंजिंग। सो ऑल ऑफ अस वी आर एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज एंड द सोल मैनिफेस्ट थ्रू द फिजिकल बॉडी। तो आत्मा इस शरीर द्वारा मैनिफेस्ट कर रही है। देखिए आत्मा में, जब आत्मा मस्तिष्क के द्वारा हमारे सेंस ऑर्गन से, आंख है, नाक है, कान है, हमारे हाथ है, हमारे मुख है, इस सेंस ऑर्गन्स के द्वारा मैनिफेस्ट करती है। वास्तव में हमारी आंखें देखती नहीं है, ऐसे तो डेड बॉडी का भी आंख है लेकिन डेड बॉडी थोड़ी देखती है। तो आंखों को तो झरोखा कहा गया है, ये आंखें झरोखे हैं। सो आईज आर द विंडोज ऑफ द हार्ट कहा गया है। तो आंखों के द्वारा आत्मा देख रही है, मुख द्वारा आत्मा बोल रही है, कान द्वारा आत्मा सुन रही है। तो वी आर सोल्स बेसिकली मैनिफेस्टिंग थ्रू दिस सेंस ऑर्गन्स। तो आत्मा में तीन शक्तियां हैं, दे आर कॉल्ड माइंड पावर, इंटेलेक्ट पावर एंड संस्कार पावर। ये तीन चीजें में, ये सब चीजें आपको हो सकता है रिविजन हो रहा है, आप पहले सुन चुके हो, दोबारा सुनेंगे तो और ही आपके बुद्धि में फिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्योंकि बुद्धि एक डिवाइन इंटेलेक्ट क्या है, समझाने के लिए ये सब मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ रहा है। तो देखिए आत्मा में ये सब शक्तियां है, दीज आर द थ्री फैकल्टीज ऑफ द सोल। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, ये मन कोई अलग चीज नहीं है, ये बुद्धि कोई अलग चीज नहीं है, ना कोई संस्कार अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अगर हॉस्पिटल में, मेरे ऑफिस में देखेगा क्या कहेगा, मैं एक डॉक्टर हूं। मान लीजिए किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कहीं मैं वहां बहुत सुंदर गीत गा रहा हूं, क्या सोचेगा कोई देखेगा तो, आई एम ए सिंगर। मैं कहीं बहुत सुंदर पेंटिंग कर रहा हूं, ब्यूटीफुल एकदम पेंटिंग कर रहा हूं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आई एम एन आर्टिस्ट, हूं तो वही व्यक्ति। इसी प्रकार आत्मा जब सोचती है उसी वक्त उसको हम मन कह देते हैं, मन कोई अलग चीज नहीं है। इस प्रकार हम जब डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं ये राइट है, रॉन्ग है, अच्छा है, बुरा है, उस समय उसको बुद्धि कह देते हैं, नहीं तो डिसाइड तो करती आत्मा ही है। इस प्रकार कर्म करते करते जो हमारी आदत बन जाती है उसको हम कहते हैं संस्कार, रिजल्ट्स, लेटेंसीज, ये सब हमारी आदतें हैं, स्वभाव है, संस्कार है। तो देखिए ये क्या चीज है, एक सेलफोन है, ये क्या चीज है, एक सिम कार्ड है, ये क्या चीज है, एक मेमोरी कार्ड है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक मोबाइल जैसा ही है, सेलफोन जैसा ही है, लेकिन एक सेलफोन में जब तक सिम कार्ड नहीं है वो किस काम का है। तो आत्मा एक सिम कार्ड की तरह है, और इसको जो सिम कहते हैं हम, एस फॉर संस्कार, आई फॉर इंटेलेक्ट, एम फॉर माइंड, मन बुद्धि संस्कार देखे इसमें है। और ये जो हमारी ब्रेन है, ये ब्रेन वास्तव में एक मेमोरी कार्ड की तरह है। हम जब मर जाते हैं, जब शरीर को जला दिया जाता है, हमारी मेमोरी कार्ड खत्म, पिछले लाइफ का खत्म। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि मेमोरी कार्ड के अलावा भी फोन में कुछ स्टोर होके रहता है, सिम में कुछ रहता है। इसी प्रकार हम जब नेक्स्ट बर्थ में चले जाते हैं, हमारी सिम अर्थात आत्मा में भी कुछ मेमोरी रहती है, लेकिन बाय द टाइम हम जब बड़े होते हैं तब तक हमारे सेंस ऑर्गन्स द्वारा हम बोलना, ये करना, एक्सप्रेस करना, वो नहीं हो पाता है क्योंकि हम छोटे होते हैं। इसलिए देखना एक छोटा बच्चा, 2 महीना का 3 महीना का छोटा बच्चा अकेला लेटा है खटिया में, उनके पास कोई भी नहीं है, लेकिन अपने आप हंस रहा है, अपने आप रो रहा है। आप सभी माताएं देखे होंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। एक छोटा बच्चा उसके पास्ट लाइफ का कई अच्छी बातें जब रिकोलेक्ट करता है, हंस उठता है अपने आप, बोल नहीं पाता है, भाषा नहीं सीखा है अभी तक। और जब बहुत एकदम दुख की बातें याद आती है, रो पड़ता है। तो आत्मा में भी कुछ रहता है, लेकिन मोस्टली हमारे ब्रेन में जो सारी मेमोरी स्टोर होकर रहती है सब इरेज हो जाता है, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट ब्रेन में स्टोर होता है। तो हमारे माइंड वास्तव में एक मन एक बेलगाम घोड़ा की तरह है। बेलगाम घोड़ा कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। आप यहां बैठे बैठे भी कई ऐसे सोचते होंगे, मुंबई की बातें, ऑफिस की बातें, घर की बातें, अपने बच्चों की बातें, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? सभी यहां हैं अभी कि कोई मुंबई में अपने गांव में कहीं तो नहीं है, ऑफिस में तो नहीं है? होता है, अक्सर करके भाग जाता है, इधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा मन, अभी अभी अमेरिका, अभी अभी लंदन, अभी अभी कहां कहां, एकदम बिल्कुल बेलगाम घोड़ा की तरह है। तो इसमें देखिए हमारा मन ऐसा एक शक्ति है, इस मन में सारे दिन में मोर देन 50,000 थॉट्स हमारे मन में क्रिएट होते हैं। हम जो सोच रहे हैं एक डेड बॉडी नहीं सोच पाता है, वो आत्मा ही मन के फैकल्टी के द्वारा सोचता है। तो देखिए सारे दिन में 50,000 थॉट्स निकलते हैं, और ये सभी थॉट्स को हम वी कैन कैटेगराइज इनटू फोर ग्रुप्स ओनली। क्या क्या थॉट्स आर कैटेगराइज इनटू? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड अननेसेसरी, दैट्स ऑल, फोर ग्रुप्स। आप मेजोरिटी हम सभी नेसेसरी थॉट्स तो करते हैं, अभी मुझे सोना है, अभी मुझे खाना है, अभी मुझे ऑफिस जाना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे अभी खाना बनाना है, जीवन में जो जरूरी चीजें हैं ये तो करना ही पड़ेगा सबको, विदाउट दैट यू कैन नॉट, तो नेसेसरी थॉट्स। लेकिन कई बातें अननेसेसरी थॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां बैठे हो, आप घर की बातें सोच रहे हो, पता नहीं बच्चे क्या करते होंगे, पता नहीं क्या होगा, यहां हो जब कुछ कर नहीं सकते हो, पास्ट की बातें सोचते रहते हैं, फ्यूचर की बातें सोचते रहते हैं, इसको कहते हैं अननेसेसरी। जब जहां है उसके बारे में सोचे ना, लोग ट्रैवल करते हैं, अरे साइट सीन देखो, ट्रेन में कितना सुंदर, कई प्रकार के लोग आते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करो, मजा लो, लेकिन वहां बैठे बैठे क्या सोचते होंगे। और कहीं ऑफिस में होंगे, घर की बातें सोचेंगे, आज सब्जी नहीं है, कौन सी सब्जी घर में लेके जाऊं, घर में होंगे ऑफिस की बातें सोचते होंगे, ये सब अननेसेसरी है। इस प्रकार व्हाट इज नेगेटिव, हम सभी जानते हैं, जिससे अपना भी नुकसान दूसरों का भी नुकसान, कैसे किसी का जेब काटूं, किसको कैसे मजा चखाऊं, कई बातें लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, ये सब नेगेटिव। लेकिन जिस सोच में हमारा भी कल्याण है दूसरों का भी कल्याण है, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव सोच। तो ये तीन प्रकार के जो थॉट्स हैं, ये तीन नेसेसरी, अननेसेसरी एंड नेगेटिव, ये तीनों में हम अपने शक्तियों को वेस्ट करते हैं। जैसे हम इधर उधर भागते हैं, शारीरिक रीति से थक जाते हैं, बेमतलब अगर इधर उधर दौड़ते रहेंगे, सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, थक जाएंगे। इसी प्रकार जब मन में ज्यादा सोचते हैं तो भी थक जाते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव थॉट्स करते हैं देन वी कंजर्व एनर्जी, हमारे अंदर शक्ति जमा होती है। तो यहां जो आप सभी आए हो, किस लिए आए हो? यहां एक सुंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, यहां एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिवर्सिटी में, यहां आपके सोच को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, सदा ही समर्थ सोचे, अच्छा सोचे, यह सिखाया जाता है, जिससे यू कंजर्व एनर्जी। आप सारा दिन कितने भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं बिल्कुल। वास्तव में थकता कौन है? शरीर ना आत्मा? कौन थकता है? शरीर थकता है, इसलिए सोते हैं हम। आप अभी बैठे हो, कौन सा तगारी उठा रहे हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग बात है तो पूरा होल डे भी बैठ के सुनेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन आपको एकदम बोरिंग है तो थक गया है हमार, कौन थक गया? वास्तव में जब हम सोते हैं 8 घंटा तक मुर्दे जैसा शरीर को पूरा एकदम साइलेंट सुलाने की, शरीर को रेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, हु इज गिविंग रेस्ट टू योर हार्ट? जब से पैदा हुए हैं मरते दम तक धड़क 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 चलता ही रहता है बेचारा, इसको रेस्ट दिया जाता है कभी? कभी आप अपने सांस को रेस्ट देते हो, आपके लंग्स को, आपके फेफड़े को रेस्ट देते हो, सोते समय भी चल रहा है? कभी आप किडनीज को रेस्ट दिए हो, कंटिन्यूअसली इट इज स्ट्रेनिंग द ब्लड? तो हमारा शरीर को 8 घंटे मुर्दे जैसा सुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम जब मेंटली थक जाते हैं बिल्कुल, तभी हमें सोने की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कहावत है, हमारे ऋषि मुनि 2-3 घंटा ही सोते थे। हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पिताश्री, हमारी दादियां कहती है बाबा कब सोते थे हम पता ही नहीं, क्योंकि सब सोने के बाद सबको कंबल मिला है कि नहीं, खाना पीना ठीक से खाया कि नहीं, सबको सब व्यवस्था है कि नहीं, सबको देखने के बाद, सबको गुड नाइट करने के बाद अपने रूम में जाते थे। आप पांडव भवन देखेंगे, पांडव भवन में बाबा का कमरा अभी भी है, वहां बाबा कभी कुंडी नहीं लगाते थे, खाली पर्दा ऐसा कर देते थे, और 2 बजे के बाद तो बाबा को किसी ने सोया हुआ खटिया में देखा नहीं, लेटा हुआ भी नहीं देखा है। हमारी एक मनोहर दादी यहां थी कुछ समय पहले, दादी शरीर छोड़ दी। दादी कहती थी हम सभी यंग थे, ऐसे तो सारा दिन बाबा को देखते थे, लेकिन हमें लगता था बाबा कैसे सोए हैं, देखेंगे थोड़ा, तो बहुत दूर चप्पल उतार के बिल्ली जैसा चुपके चुपके आके रात को 12 बजे 1 बजे पर्दा जैसे ऐसे खुलते, बाबा कहते आओ बच्ची क्या बात है इतनी रात में। बाबा जैसे जागती ज्योत, क्यों? बाबा को हमारी प्रकाशमणि दादी कहती थी, बाबा को कितने बार कहते थे, बाबा हम लोग इतने सभी हैं, आप जाके दोपहर को रेस्ट करो ना, खाना के बाद थोड़ा सा रेस्ट करो ना। बहुत कहने के बाद बाबा 4 बजे जाते थे। कितने बजे लौट के आते थे? 4:15 बजे। तो बाबा को कभी एकदम गहरी नींद में पूरा खर्राटा लगा के कभी नहीं देखा किसी ने, क्योंकि बाबा की सोच कैसे भला हो सबका, कैसे कल्याण करूं सबका, कैसे उद्धार करूं सबका, कैसे सभी लोग अच्छे हो जाए, संसार स्वर्ग हो जाए, सदा ही उनके समर्थ सोच, अच्छा सोच सबके लिए चलता था। बाबा थकते नहीं थे बिल्कुल। 93 एज तक बाबा जो कार्य करके गए, आजकल के जवान थक जाएंगे। तो हमारी सोच वास्तव में सदा पॉजिटिव होना चाहिए। देन व्हाट इज इंटेलेक्ट? बुद्धि क्या काम करता है? बुद्धि में हम रीजनिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और क्या करते हैं, कुछ बात को समझते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, अंदाज लगाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं। ये सब बुद्धि का काम है। बुद्धि द्वारा रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पेकुलेटिंग, विजुअलाइजिंग, रियलाइजिंग, ये सब बुद्धि का काम है। और इस प्रकार संस्कार क्या है? संस्कार अर्थात जो कर्म हम करते हैं, जो आदत बन जाते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे किसी डिस्क में हम रिकॉर्ड करते हैं, सीडी डीवीडी में, ऐसे हमारे कर्म आदत बन जाते हैं रिकॉर्ड होके। द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्शन इज कॉल्ड संस्कार। हर एक बुद्धिजीवी कभी भी गणपति को देख के, बॉम्बे में गणपति पूजा बहुत फेमस है, गणपति जी को कहता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धिदाता भगवान, उनको हम प्रार्थना करते हैं, गणपति जी मुझे बुद्धि दो, अच्छी मुझे बुद्धिमान बनाओ, तो उनको लॉर्ड ऑफ विजडम कह के पूजा करते हैं। व्हाई वर्शिप? क्यों? आपने कभी सोचा है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, वास्तव में हमारे आत्मा में थॉट्स क्रिएट होता है माइंड के थ्रू। जब थॉट्स क्रिएट करते हैं तो ही हम कर्म करते हैं। जो भी काम करते हैं पहले मन में हमारा विचार आता है, मैं ये करूं, फिर आप करते हो। तो मन द्वारा सोचते हो, हाथ द्वारा कर्म करते हो, और कर्म बार बार जब होता है वो हमारी आदत व इंप्रेशन बन जाता है, संस्कार स्वभाव हो जाता है। और जब आदत बन जाता है फिर उसी अनुसार इसी प्रकार ही थॉट्स आता है। एक नॉर्मल व्यक्ति हाथ से कर्म करता है, और हमारा हाथ कहां से निकला है? कहां से निकला है? कंधे से निकला है, शोल्डर से निकला है ना? नहीं, लेकिन एक हाथी का हाथ क्या है? ट्रंक है। जो सुंड है उसको हाथी का हाथ कहा जाता है, उससे ही वो करता है। तो देखिए, ये गणपति का हाथ कहां से निकला है? यहां से निकला है, यहां से निकला है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति यहां से करता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति यहां से करता है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपके मन में कोई विचार आया, व्हिमसिकली कर दिए, फिर कहते अरे यार ऐसा नहीं करना था यार, ऐसा हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, यहां से सोच समझ के, बुद्धि को लगा के सोचता है पहले, करूं कि नहीं करूं, फिर करता है, डिसीजन लेके करता है, फिर वो कभी रिपेंट नहीं करता है। इसलिए हम गणपति को पूजा करते हैं। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले बुद्धि द्वारा डिसीजन लेता है, फिर कर्म करता है, तो वो कभी भी रिपेंट करना नहीं पड़ता है उसको। इसलिए हम गणपति जी को बुद्धिमान, बुद्धिदाता कह के हम पुकारते हैं, पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब है, हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है। मन में तो बहुत सारे विचार आएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन बुद्धि कहेगा अरे नहीं करना ऐसा तुझे। कभी कभी बुद्धि हमें अलाउ करती है तो करते हैं, नहीं अलाउ करती तो नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे डिसीजन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। डिसीजन लिया था और ठीक नहीं था, बाद में रिपेंट करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बुद्धि कभी राइट डिसीजन भी लेती है, कभी रॉन्ग डिसीजन भी लेती है। जिसकी बुद्धि जितनी डिवाइन है, जितनी दिव्य है, अलौकिक है, शुद्ध है, प्योर है, क्लीन है, उसका डिसीजन इतना क्लियर होता है, इतना राइट होता है। इसलिए देखिए, द बुद्धि इज जस्ट लाइक ए जज एंड द माइंड इज जस्ट लाइक ए लॉयर। लॉयर तो बहुत उल्टा सुल्टा झूठ मोटी ए से आके पेश करेगा, लेकिन जज अगर ठीक होगा, ही विल गिव द राइट डिसीजन। लेकिन आजकल के जज कभी कभी थोड़ा कोई करप्ट होते हैं, तो वो लॉयर फिर अपना बना देता है ना नहीं। लेकिन अगर जज पूरा एकदम स्ट्रिक्ट है, ही विल गिव द राइट डिसीजन। सिमिलरली जी 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 हां, माइंड माइंड में थॉट्स निकलता है, डिसीजन मेकिंग वो बुद्धि का काम है। जैसे जज और लॉयर में दोनों में अंतर है, लॉयर बहुत सारे आर्गुमेंट करता है ऐसा ऐसा, लेकिन इंटेलेक्ट जज करता है ये राइट है। एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर होगा। आपका एक फ्रेंड आया, कहता है चल यार आज थोड़ा चोरी करने जाते हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहा है, अरे दुनिया में कौन चोर नहीं है, सब चोरी करते हैं, किसने भी अगर बड़ा आदमी बना है तो बिना चोरी कभी हो ही नहीं सकता है, क्या है तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा साथ देना है, आ। आपका खास फ्रेंड है, आपके मन में आएगा हां यार ठीक तो बोल रहा है, मुझे कुछ करना तो नहीं है, खाली जाना है उसके साथ, ये मन आर्गुमेंट दे रहा है। लेकिन आपकी बुद्धि कह रहा है खबरदार बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। मन कह रहा है जाऊं, आपकी बुद्धि कह रहा है कि नहीं। विवेक जिसको कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, वो बुद्धि का आवाज है। लेकिन मान लीजिए आपका फ्रेंड को आप ना कर नहीं सके, ये डोमिनेटेड योर माइंड, डोमिनेटेड योर इंटेलेक्ट बुद्धि, आप चले गए एक बार और सचमुच आप चोरी करके, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, उसका साथ दिए, वो चोरी करके लेके आपको 10 लाख रुपया दे दिया, ले नेक्स्ट डे आएगा चलना है, अरे यार मैं कुछ नहीं किया ऐसे मिल गया चलता हूं, मन कह रहा है, बुद्धि कहता है एक दिन तो कर दिया अब नहीं जाना है तुझे, माइंड कहता है क्या है कुछ तो करना नहीं है, खाली तो साथ में चलना है, क्या है इसमें, क्या नुकसान है, सब तो चोरी करते हैं। तो लॉयर कई प्रकार के आर्गुमेंट देगा, बुद्धि उसको डिसीजन लेगा। लेकिन बुद्धि अगर परफेक्ट है, आप मन कुछ भी सोचे, बुद्धि उसको अलाउ नहीं करेगा, नहीं करना है तुझे। तो बुद्धि अगर बायस्ड है, करप्ट है, तो मन उसको अपना बस बना देता है। तो देखिए, आत्मा वास्तव में जैसे एक मालिक है, बुद्धि एक लगाम है, मन एक घोड़ा है। तो अगर आप बुद्धि रूपी लगाम को अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखते हो, तो मन किधर भी नहीं जा सकता है, मन को पूरा कंट्रोल में, कुछ भी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मन को अपने बस में रख सकते हैं। मन तो उल्टा पुल्टा सुलटा क्या क्या सोच आएगा, कितना क्या क्या आएगा, लेकिन बुद्धि ठीक है, मन को एकदम आप कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो देखिए, यह हमारी बुद्धि, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसको प्रभावित करता है। जैसे एक जज है, हां देखिए, जैसे मैं बताया, कुछ मेमोरी आपके फोन सेलफोन में रहता है, कुछ मेमोरी मेमोरी कार्ड में भी रहता है। इस प्रकार जो बहुत सारे मेमोरी हमारी ब्रेन में भी, हमारी आत्मा में भी रहती है, दोनों दोनों आपका ब्रेन में भी रहता है। जो देखिए, हां ब्रेन इज हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में भी रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए, आपको उसको सारे जीवन में, जीवन काल में बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, कई सारी चीजें हमें ऐसे ही याद है। देखिए, 7 दिन पहले आपको क्या सब्जी आप खाए थे याद है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन बचपन में कौन से गांव में जन्म हुए थे, कौन से आपके दोस्त थे, कौन से आपका स्कूल टीचर थे, बहुत सारी बातें हम मरते दम तक नहीं भूलते हैं। तो हमारी मेमोरी जो है, आत्मा में भी कुछ रहती है, कुछ हमारे ब्रेन में भी है। जी देखिए, अगर होता तो फिर हम ABCD से स्टार्ट नहीं करते, फिर से क ख ग घ से शुरू नहीं करते, लेकिन कुछ संस्कार जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक म्यूजिक, बहुत सुंदर म्यूजिक सीखा है सारा जीवन, अगले जन्म में आपको, छोटे बच्चे होते हैं देखना, उनको कभी डांस नहीं सिखाए होंगे, इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं, कभी गीत गाना संगीत सिखाया नहीं, फिर भी बढ़िया प्ले कर रहे हैं। तो वो संस्कार है, वो करते करते जो है वो चला जाता है। लेकिन जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ये सब चीजें बहुत कोई पिछले जन्म में साधना किया है तो अगले जन्म में भी वो मैनिफेस्ट हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन वो सारा इरेज हो जाता है मोस्टली। तो देखिए, हमारे जो बुद्धि को कौन असर करता है, हमारे भोजन जो हम खाते हैं ये बुद्धि को डायरेक्ट असर करता है, हमारे मन को भी डायरेक्ट असर करता है। इसलिए शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड शेक्सपियर, लेट मी नो योर डाइट आई विल टेल व्हाट यू आर, तुम क्या खाते हो मुझे बता दो, मैं तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो बता दूंगा। लेट मी नो योर फ्रेंड्स आई विल टेल व्हाट यू आर, तुम किसके साथ उठते बैठते हो मुझे बताओ, मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी हो। सो फूड एंड कंपनी, अन्न दोष और संग दोष, ये जीवन के दो शत्रु हैं दोस्तों, ये दोनों सत्यानाश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं, बच्चे अन्न दोष और संग दोष से बचो। कभी भी हमारे श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, हमारे भोजन तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक बारे में बताया है। तो भगवान कहते हैं शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा, तुम्हारी बुद्धि भी अच्छी रहेगी। जो सब गंदी चीजें खाते हैं आप कहेंगे अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कुछ चीजें आप खाओ तुरंत उसका असर पता चलता है। मान लीजिए मैं इतना पॉइजन आपको दे दूंगा, खाते ही आप तुरंत मर जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइजन, थोड़ा थोड़ा पॉइजन रोज दूंगा आपके भोजन में ऐड कर दूंगा, क्या होगा, बहुत साल के बाद स्लो पॉइजनिंग होकर डेथ होगा। इसी प्रकार अरे एक अंडा खा लिया क्या नुकसान है, अरे वो बर्गर खा लिया क्या हो गया, इमीडिएटली नहीं दिखता है, लेकिन उसका जो स्लो एंड डेलिटेरियस इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म में पता चलता है, इमीडिएट नहीं पता चलता है। आप एक मिर्ची खा लो तुरंत एकदम तुरंत शुरू हो जाएगा, कुछ आप एकदम बासी चीजें स्टेल चीजें खा लो एकदम आपको आलस्य आएगा, नींद आएगी। तो हमारे देश में हमारी श्रीमद् भागवत गीता में कब से भगवान वाच है, हमारा भोजन तीन प्रकार के हैं, जो सदा शांत रहना चाहते हैं, सदा खुश रहना चाहते हैं, सदा आनंदित रहना चाहते हैं, जो योगी जीवन जो बिताना चाहते हैं, उनको शुद्ध और सात्विक भोजन ही स्वीकार करना चाहिए। और यहां इस विश्वविद्यालय में यही हमें बताया जाता है। मैं बचपन से कभी नॉनवेज खाया नहीं, क्या मेरा नुकसान हो गया ना, क्या मेरा हाइट में कम हो गया ना, मेरी बुद्धि की कम हो गई। दुनिया में सबसे पावरफुल एनिमल कौन है, कौन है, एलिफेंट। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होके गए हैं वो सभी शाकाहारी थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम सुने होंगे, वो एक बार वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि तुम अगर नॉनवेज नहीं खाओगे तुम्हारा डेथ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इट इज ए चैलेंज टू द होल मेडिकल फ्रैटर्निटी, मैं नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा तो जो होगा होगा देखूंगा, लेकिन नहीं खाऊंगा नॉनवेज। अगर मैं मर जाता हूं, अगर आउट ऑफ सिंपथी कोई ह्यूमन बींग मेरे डेड बॉडी के साथ स्मशान घाट तक नहीं जाता है, आउट ऑफ सिंपथी जितने भी ये सब भेड़ बकरी हैं, ये सब हैं जानवर जिसको तुम मार के खाते हो, वो लोग मेरे डेड बॉडी के साथ स्मशान घाट तक चलेंगे। और ऐसा ही हुआ कि उनका डेथ हुआ नहीं, जीवित रहे। कहने का मतलब आज ग्लोबल हॉस्पिटल आप आइए हमारे यहां है, हम जो हम खाते हैं, जो शुद्ध सात्विक भोजन जो प्रसाद रूप में हम खाते हैं भोग लगा के परमात्मा को अर्पण करके, वही भोजन हमारे सभी पेशेंट्स को देते हैं। कभी भी कोई नॉनवेज कुछ नहीं दिया जाता है, सब पेशेंट ठीक होके जाते हैं। तो आउट ऑफ परवर्सन ओनली हम सब कुछ भी खा देते हैं, जिससे हमारी आत्मा का अकल्याण होता है, हमारे मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। और जैसा संग ऐसा रंग, किसी के साथ हम बैठते हैं उठते हैं वो हमें सदा ही अच्छा सुनाता है, पॉजिटिव बात करता है, तो उसका ही वास्तव में बहुत सुंदर असर होता है। अगर हम गंदे लोगों के साथ बैठेंगे जिनके विचार अच्छा नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब प्रिंट होता जाता है। इसके सारे बहुत एग्जाम्पल्स है लेकिन समय के अभाव से मैं नहीं बता पाऊंगा सारे। तो देखिए हाउ टू मेक योर इंटेलेक्ट डिवाइन, तो अब प्रश्न उठता है अभी बुद्धि क्या समझ में आई, लेकिन ये बुद्धि को कैसे डिवाइन बनाया जाए ताकि हमारे जीवन में पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी जो भी सारी क्वालिटीज में बताया, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए या किसी भी प्रोफेशन में एक्सलेंसी के लिए जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, ये पाने के लिए आपको एक डिवाइन इंटेलेक्ट की आवश्यकता है। और वो डिवाइन इंटेलेक्ट कैसे होगी, इसका साधन है, हमारी दादी कहती है स्पिरिचुअल नॉलेज मेक्स द इंटेलेक्ट डिवाइन। जो जितना आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, पठन पाठन करेगा, उसकी बुद्धि ही दिव्य बनेगी। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, कोई शास्त्र आदि पढ़ना, कोई वेद शास्त्र उपनिषद जो भी स्क्रिप्चर्स है उपलब्ध है, उसको डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट, जिसके लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। हम भगवान को क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, भगवान को मांगते हैं, और हमें दिव्य ज्ञान दो, भगवान को प्रार्थना करते हैं। कहते गॉड इज लाइट, लीड काइंडली दाओ लाइट, नॉलेज को लाइट कहा जाता है। तमोसमा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। कहते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, आंखें तो है फिर भी हम क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि बुद्धि एक नेत्र है। सभी आंख बंद कर दीजिए, सभी आंख बंद कर दीजिए। देखिए आपके पिताजी आपको याद नहीं आना चाहिए, आपके पिताजी का बिल्कुल याद नहीं आना चाहिए, आंखें बंद कर दीजिए, पिताजी बिल्कुल नहीं याद आना चाहिए। जिसको सचमुच पिताजी याद नहीं है हाथ उठाए कोई एक दो बिरला, बाकी पिताजी कहते ही सामने उनका चित्र आ जाता है। कौन देख रहा था पिताजी को, आप सभी स्वप्न देखते हो रात को, उस समय आपकी आंखें बंद होती है कि खुली होती है, कौन देखता है फिर स्वप्न, कौन देखा, किसने देखा। तो बुद्धि को भी एक नेत्र कहा जाता है। तो भगवान को कहते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो वास्तव में हमारी ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, बुद्धि रूपी नेत्र खुली नहीं है, जिसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज भगवान देते हैं, ये संसार क्या है, ये संसार में दुख क्यों है, क्या करने से जीवन में सुख पाएंगे, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, मरने के बाद कहां जाते हैं, भगवान कौन है, ये सारी बातों को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। जिसका स्क्रिप्चर्स में हमारे लिखा है, ऋषि मुनि लिखे गए हैं, नेति नेति, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका अंत नहीं है, न इति न इति, रचना और रचयिता के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वो ज्ञान भगवान हमें देते हैं, जो दुनिया में कहीं कोई व्यक्ति, विद्वान पंडित शास्त्री कोई नहीं दे सकता है, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से ही हमारी इंटेलेक्ट डिवाइन होती है। और कैसे होता है, मेडिटेशन एम्पावर्स एंड कीप्स द इंटेलेक्ट क्लियर एंड प्योर। आप जितने मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे, आपकी बुद्धि उतनी क्लियर प्योर होती जाएगी। तो देखिए स्पिरिचुअल विजडम कीप्स वन पीसफुल ब्लिसफुल एंड लवफुल। जीवन में जो जितना स्पिरिचुअल विजडम धारण करता है, उसका ही जीवन वास्तव में शांतिमय होता है, आनंदमय होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा ही जीवन में सदा आनंदित हम रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आपके पास मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। एक व्यक्ति है जो कि जीवन में कहता है मैं आई एम सक्सेसफुल, सभी देखते हैं इसको, वाह इसके तो मल्टी मिलियनर है, फर्स्ट ऑफ में, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ में इसका नाम है, इसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ही इज सफरिंग फ्रॉम सब प्रकार की बीमारियां, जो भी बीमारियां आप नाम ले सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सब सब बीमारियों के खान है। और घर में बच्चे एकदम पूरा नालायक, बीवी और कहां, कोई पारिवारिक सुख नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमेशा एकदम चिंता में डूबा रहता है। लोग उसको बहुत सक्सेस नजर से देखते हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है। दूसरा एक व्यक्ति है, छोटा सा भले बिजनेस करता है, लेकिन सब उसके ऊपर खुश है, वो भी सबके ऊपर खुश है, घर में परिवार में भी सब संतुष्ट है, एक बहुत सुंदर माहौल है, सब मिलजुल के प्रेम प्यार से रहते हैं, खाते पीते संतुष्ट रहता है, बहुत आनंद एकदम जीवन एंजॉय करता है। हुई सक्सेसफुल द फर्स्ट वन और सेकेंड। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब है, आप सक्सेस किसे कहते हो, क्या बहुत गाड़ी मोटर महल हो जाए आसपास में आपके टाउन में, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं होगा, ऐसी गाड़ी आपके पास हो, जितना बिल्डिंग आपके जितने लंबे एकदम बिल्डिंग, ऐसा किसी के नहीं हो, आपके जितने मिल ये सब हो किसी के पास ना हो, तब आप सक्सेस हो। नहीं नहीं, जीवन में सफलता तब कहेंगे अगर हम संसार में मरने के बाद हजारों साल भी लोग हमें याद करते हैं। दोस्तों जीवन में हम देखते हैं, संसार में मनुष्य तो मच्छर जैसे आए गए, कितने करोड़ों लोग मरते जा रहे हैं पता नहीं, तो कईयों के जीवन तो जैसे कि एक अनगढ़ंत पत्थर की तरह है, जैसे पड़ा है, कोई उसका वैल्यू नहीं है। परंतु कईयों के जीवन वास्तव में मूर्ति की तरह है। आज मदर तेरेसा, देखिए जीवन में इतने साल के बाद भी, मरने के बाद भी सारे वर्ल्ड में लोग उनको याद कर रहे हैं। ऐसे बहुत महापुरुष, किस किस का नाम लूं, हजारों साल हो गया शरीर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे सफल। ना कि आप स्थूल जो भौतिक चीजें देख रहे हो जो कि विनाशी है, उसको सफल कहा जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं जिस मेडिकल कॉलेज में पास किया, मेरा एक मेडिसिन प्रोफेसर थे, ही वॉज ए एक्सलेंट टीचर, आई टेल यू एक्सलेंट टीचर। वो बाद में हमारे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बने, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, करोड़पति, एक राजमहल की तरह बिल्डिंग है उनकी, दो बच्चे, ये सवेरे से लेकर रात तक पूरा हॉस्पिटल हॉस्पिटल बिजी बिजी बिजी, दो बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से उनको कैसे कैसे कोचिंग इधर उधर करा के दोनों को डॉक्टर बना दिए। एनीवे बन गए भी डॉक्टर, शादी भी हो गई, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। छह साल पहले जो बड़ा बेटा सुसाइड कर लिया, दो छोटे बच्चे हैं पोते और बहू विडो। सेकेंड बच्चा जो सेकेंड सन है, ही वॉज ए ड्रंकर्ड, 24 आवर्स ड्रंक बिल्कुल, उसका लीवर खराब हो गया, अभी 6 महीना पहले ही डाइड, उसके भी दो छोटे बच्चे हैं। तो मैं पूछता हूं आपको, क्या जो मेरे टीचर, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, करोड़ों संपत्ति है, राजमहल जैसा बिल्डिंग है, इज ही सक्सेस इन हिज लाइफ? यस और नो? लेकिन मैं ऐसे भी देखा हूं डॉक्टर जो कि बहुत नहीं है, बहुत एकदम धन संपत्ति नहीं है, लेकिन जहां भी जाता हूं लोग उनके चरण छूते हैं, देखता हूं साष्टांग प्रणिपात करते हैं उनके पास। ऐसे इतना एकदम बूट सूट नहीं है, कोट एकदम नहीं है कि जो एकदम उसका प्रोफाइल सारे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, नहीं, परंतु जहां जाते हैं ही इज वर्शिप्ड बाय एवरीबॉडी। इज ही नॉट सक्सेसफुल? तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मैं यही आपको बताऊं। आज यही होड़ लगी हुई है, यही कंपटीशन है, लोग कहते हैं पड़ोसी के पास ये कार है तो हमारे पास इससे और बेहतर कार हो तभी मैं जीवन में सक्सेस हूं, इसके पास इतने करोड़ है तो मेरे पास इतने करोड़ हो तो ही मैं सक्सेस हूं। ये गलत फहमी है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्शन है। तो जीवन में सक्सेस वो है जो खुद संतुष्ट है, खुश है, उनके परिवार के सभी सदस्य, सभी परिवार सभी संतुष्ट हैं, खुश हैं, उसके अड़ोस पड़ोस खुश हैं, सबके साथ प्रेम प्यार से रहता है, मिलजुल के रहता है, सबको सहयोग देता है, सहयोग लेता है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल है, वो हजारों लाखों साल तक जिंदा रहता है। जैसे एक अनगढ़ंत पत्थर किसी मूर्तिकार के हाथ में आ जाता है, कितना मूल्यवान हो जाता है, उसको मूर्ति के रूप में पूजा किया जाता है, नहीं तो ऐसे ही पत्थर है। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है संसार में हम सभी मनुष्य जन्म तो लिए हैं, पशु पंछी भी जन्म लेते हैं, खाते हैं पीते हैं, वो भी अपने घोंसला बनाते हैं, पंछियां बच्चे भी पैदा करते हैं, एक दिन मर जाते हैं। इस प्रकार हम भी मनुष्य होके अगर संसार में पैदा हुए, एक बिल्डिंग बना दिए, एक महल बना दिए, कुछ कर दिए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए, एक दिन मर गए, तो पशु पंछी और हमारे में क्या अंतर है? क्या अंतर है बींग ह्यूमन बींग, हाउ वी आर ग्रेटर देन देम, सुपीरियर टू देम? कहने का मतलब है जो भगवान को पहचान लेता है, भगवान ही उसकी बुद्धि को ऐसे दिव्य बना देते हैं, वो पूजनीय मूर्ति की तरह हो जाता है, समग्र विश्व में लोग उनका पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेलेक्ट एंड बिजनेस देन? आपके बिजनेस और इंटेलेक्ट में क्या संबंध है वो आपको बताऊंगा। देखिए, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर, जीवन में अगर आप सफल हुए हो या फेल हो गए हो, इसका क्या कारण है? व्हाट इज द कारण? देखिए दोस्तों, जीवन में अगर हम कभी भी धोखा खाते हैं, दो हमारे पास दो शक्ति की कमी जिसके कारण हम धोखा खाते हैं, एक होता है परखने की शक्ति, दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। परख नहीं पाते हैं, कई आपको आश्चर्य लगेगा, मैं अपने सत्य बातें मेरे जीवन की कहानी सुनाता हूं, मुझे लोग इतने बार चीटिंग करके मेरे से लिए हैं पैसा, आप सोच भी नहीं सकते हो। जब इस विश्वविद्यालय से पहले मैं इतना इमोशनल था, मेरे सामने आके कोई भी थोड़ा सा रो लेगा, कुछ एक्टिंग कर लेगा, तुरंत मेरे पास जो होगा दे दूंगा उसको। कितने बार आई हैव बीन चीटेड, आई टेल यू। आप दिल्ली अभी भी जाइए, आपको मिलेंगे कहीं बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, एकदम बूटेड सूटेड लोग मिलेंगे, पूरा बिल्कुल एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते होंगे, कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, आई लॉस्ट माई पर्स, समबडी एक्चुअली हैव स्टोलन इट, एंड जस्ट गिव मी 100 रुपीज, इफ यू डोंट बिलीव यू टेक माई वॉच। I'll definitely, once I reach my home, I'll definitely give you, return to you. ऐसा बोलेंगे आपको कोई भी व्यक्ति इमीडिएटली 100 रुपीज तो मांगता है यार, दे देगा। नेक्स्ट जाएंगे फिर वही घूमता होगा वही व्यक्ति। ऐसे लोग हैं दुनिया में, मैं खुद देखा हूं, ऐसा धोखा देने वाले हैं आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन जिसकी बुद्धि दिव्य है वो कभी भी धोखा में नहीं आएगा। जीवन में जो धोखा खाता है वही असफल होता है, जो धोखा कभी नहीं खाएगा ही विल बी सक्सेस। एंड धोखा से बचने के लिए दो शक्ति चाहिए, वो है परखने की शक्ति। जैसे एक हंस होता है, वो हंस क्या करता है, ये मोती है कंकड़ है एक सेकंड में परख लेता है, मोती ही चुगता है। जिसकी बुद्धि डिवाइन हो जाती है ही कैन डिस्क्रिमिनेट वेरी वेल, कोई भी व्यक्ति आते ही परख लेंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा के सामने लास्ट दिनों में कोई भी आता था, बाबा के सामने आते ही खड़े होते ही बाबा बता देते थे उसके मन में क्या चल रहा है। बच्चा अच्छा तू ये पूछने आया है, ले ऐसा। हमारी दीदी थी, हमारी दीदी के सामने कोई भी आए फट से बिना बताए बता देंगे तुम ऐसे हो ये हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे दिख रहा है उसका इमेज। तो डिवाइन इंटेलेक्ट से ही आप किसी व्यक्ति को परख सकते हो अच्छी तरह से, कोई भी परिस्थिति को। जैसे एक बहुत सक्सेसफुल जौहरी जो होता है प्योर गोल्ड है कि नहीं, वो गोल्ड को देखते ही परख लेता है फट से, कितना खाद है पता चलता है। तो इसी प्रकार हम जीवन में जिसके परखने की शक्ति नहीं है वही धोखा खाता है। इस प्रकार पावर टू डिसाइड, कभी कभी हम मूंझ जाते हैं करें कि नहीं करें, क्या करें कैसे करें। तो पावर टू डिसाइड, जीवन रूपी भवसागर में मझधार में कभी हम हो जाते हैं और सोच नहीं पाते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन जिसकी बुद्धि जितनी क्लियर है, इंटेलेक्ट जितनी डिवाइन है, ही कैन ओनली डिसाइड। तो देखिए डिवाइन इंटेलेक्ट मेक्स वन नॉलेजफुल पावरफुल एंड सक्सेसफुल। जिसकी बुद्धि जितनी डिवाइन हो जाएगी, नॉलेजफुल हो जाएंगे पावरफुल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एनदर थ्री थिंग्स यू शुड नेवर लूज इन योर लाइफ, जीवन में और तीन चीजें, आज तीन की बातें सुनाऊंगा, बताया था आपको, पीस प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सिमिलरली और तीन बातें, पीस होप एंड ऑनेस्टी, ये तीन चीजें भी बहुत वैल्यूबल है लाइफ में। ये तीन चीजें क्यों नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ए पीसफुल माइंड कैन टेक ए करेक्ट डिसीजन। आपके मन अगर बुद्धि अगर शांत है तो ही आप जीवन में करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। निर्णय तभी आप ले सकते हो जब मन बुद्धि शांत है। रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी सीन इन ए बॉइलिंग वाटर, कहीं पानी उबल रहा है आप उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है आपको? सिमिलरली ट्रूथ कैन बी सीन इन ए स्टेट ऑफ एंगर, जब हम गुस्सा करते हैं क्या सही है दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं, एनालाइज एंड फाइनलाइज। तो जीवन में जब हम गुस्सा करते हैं उस समय हम सत्य क्या है असत्य क्या है कभी परख नहीं सकेंगे, वो तो उबलता हुआ स्टेज है माइंड का। तो जीवन में इसलिए शांति बहुत आवश्यक है। सिमिलरली होप, आशा, जीवन में कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होकर रहना चाहिए। होप इज गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज इट इज द मैजिक दैट इंस्पायर्स अस टू टॉलरेट कीप ट्राइंग लर्निंग लविंग एंड लिविंग। जीवन में हमें बहुत बातें सिखाती है आशा। आज जीवन में जितने भी महापुरुष होके गए हैं, जितने भी महापुरुष, इस सभी के जीवन में वास्तव में दे हैव कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावादी होके रहे हैं। अगर महात्मा गांधी सोचते पता नहीं कहां हम ये अंग्रेजों को भगा सकेंगे, इतना ऐसा है ये तो नहीं हो सकता है, वो ये उम्मीद नहीं है, हो सकता था? स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन एंड होप, करके ही छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। तो देखिए जीवन में वास्तव में फेल्योर उसे नहीं कहा जाता है जो गिर जाता है, गिर पड़ता है। फेल्योर इज नॉट फॉलिंग डाउन बट इट इज रिफ्यूजिंग टू गेट अप। कोई अगर गिरना चढ़ना, जीवन में एक छोटा बच्चा कितने बार चलना सीखने से पहले कितने बार गिरता है, लेकिन वो चलते चलते एक दिन सफल हो जाता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है, सब कुछ कर देता है। इस प्रकार जीवन में कोई कभी नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कभी कोई कुछ नुकसान नहीं होगा, फेल नहीं होगा, कुछ नहीं। नहीं, जीवन में फेल्योर ही तो हमें आगे लेसन सिखाते हैं, आगे कैसे हम सावधान होकर और सक्सेस बनेंगे सिखाते हैं। तो इसलिए कोई अगर आशा ही छोड़ दे मेरे से तो नहीं हो सकता है, गया, वो कभी भी आज जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आशा बहुत एक इंपॉर्टेंट सौगात है भगवान का हम सभी के लिए। तो कभी भी निराश, हताश, उदास नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा बिजनेस गुरु है, उन्होंने कहा, आई बिलीव फंडामेंटल ऑनेस्टी इज द की स्टोन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धोखेबाज है, डिसऑनेस्टी है, वो ज्यादा समय के लिए सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और एक बिजनेस गुरु ने कहा है, ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। ये बहुत एक वैल्यूएबल गिफ्ट है, कोई बहुत चीप लोगों से आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ए लायन इज टेलिंग, आई वर्क फॉर ऑनेस्टी, इफ यू वॉन्ट लायर्स देन हायर समवन एल्स। तो जो वास्तव में जो ऑनेस्ट है, वफादार हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनको कभी भी लूज नहीं करना चाहिए जीवन में। हमारे साथ अगर सहयोगी सभी ऑनेस्ट हैं तो देन ओनली विल बिकम सक्सेसफुल। आपके पास झूठे लोग बहुत होंगे, जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं आप। तो ऑनेस्टी का, हम खुद ऑनेस्ट रहें और जो ऑनेस्ट रहते हैं उनका भी हमें वैल्यू रखना आवश्यक है। एनदर थ्री थिंग की टू सक्सेस, और तीन बातें मैं आपको सुनाऊंगा, दैट इज लव, करेज एंड ट्रुथ। लव, करेज एंड ट्रुथ, ये तीन चीजें भी जीवन में बहुत आवश्यकता है। डोंट बी अफ्रेड टू लव, दिस इज द स्वीटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एक्ट। जीवन में प्यार करना, कभी भी इसके लिए संकोच करना, डरना नहीं है। लेकिन प्यार की परिभाषा दोस्तों बदल चुका है दुनिया में। प्यार किसे कहा जाता है? निस्वार्थ प्यार, जो प्यार हमें हमारे मां बाप से हमें मिलता है, जो प्यार हम भगवान से करते हैं, उसको ही वास्तव में निस्वार्थ प्यार कहेंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर कहावत किसने कहा, वी फॉल इन लव विथ ह्यूमन बींग्स। जब भी किसी से किसी का प्यार हो जाता है, लोग अक्सर करके क्या कहते हैं, आई फेल इन लव विथ समबडी, है ना? नहीं, फलाना ना लेंगे। नोबडी सेज आई राइज इन लव विथ समबडी। किसने कहा है आज तक सुना है किसने? तो जब मनुष्य के साथ प्यार होता है उसमें डाउनफॉल होता है दोस्तों, लेकिन ओनली लव, देयर इज ऑलवेज राइज इन लव विथ गॉड। परमात्मा से अगर प्यार होगा तो आपका जीवन में प्रगति ही प्रगति है, प्रगति ही प्रगति है। लेकिन क्या आप कहेंगे कि कोई मनुष्य से प्यार नहीं करना है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। देखिए, जीवन में जब भगवान से सच्चा प्यार हो जाता है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासी हैं, हम कहते थे। तो भगवान से अगर सच्चा प्यार हो गया तो हम भगवान जैसा ही प्यारा बन जाते हैं। और वो प्यार, जैसे भगवान निस्वार्थ, अनकंडीशनल लव फॉर एवरीबॉडी, जैसे सबको, बिल्कुल कोई जाति पाति भेदभाव नहीं, सबके लिए भगवान प्यार लुटाता है, हमारा प्यार भी सभी मनुष्यों के साथ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों। कोई एक व्यक्ति के साथ सीमित नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति, किसी ने कहा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारे हैं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारे हैं, मरो तो ऐसे मरो जैसे कोई तुम्हारे नहीं है। तो जीवन में यही सच्चा जीवन की, जीवन जीने की कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो सबके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से वो रह सकता है जो भगवान से अपार प्यार लुटा है, जिसके पास इतने असीम प्यार है जो सबको अनकंडीशनली दे सके, अनकंडीशनली दे सके। मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं कहा कि कोई मनुष्य से प्यार ना हो, जो प्यार जिसके साथ, सबके साथ समान प्यार हो। एंड हैव द करेज टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज वेज। भगवान जो रास्ता हमें बताते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए भी हमें करेज होना चाहिए, करेज होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि लोग आपको पागल कहेंगे। अगर भगवान से प्यार हो गया, मैं आपको एक बात, मेरे जीवन का अनुभव, जस्ट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। व्हेन आई फिनिश्ड माय मेडिकल करियर इन द ईयर ऑफ 83, मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग हुई, जहां डेली 200-300 पेशेंट देखना पड़ता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मच्छी बाजार की तरह कैसे लोग आके कैसे घेराव करते हैं, कैसे होता है आप जानते होंगे। एक ही साथ 25-30 लोग आपके आमने सामने चारों तरफ घेराव करके, कोई कहता मेरा पेट दर्द हो रहा है, कोई कहता मेरा दांत दर्द होता है, कोई कहता डायरिया हो रहा है, कोई हेडेक हो रहा है, एक ही साथ 15 लोग शाउट करते रहेंगे, कैसा लगेगा आप सोचिए। मेरे जो कलीग दूसरे होते थे 5 मिनट भी बैठ नहीं पाते थे, उठ के भाग जाते थे, 1 घंटा कोई गायब, 2 घंटा कोई गायब चाय पीने के लिए। डेली 300-400 पेशेंट देखो, ऐसा लगता था बहुत कम एज में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि खाली अगर कोई बोलता तो अलग बात है, कई ऐसे भी पेशेंट आते थे, मैं पूछता था क्या हुआ भाई, मुख से कुछ बोलना नहीं है, मेरे एकदम नजदीक आके मेरे छाती को यहां पकड़ के जोर से दबा के कहते डॉक्टर साहब मेरा यहां दुखता है, मेरा यहां दुखता है। अरे भाई तू तेरा छाती दबा ना, मेरा छाती क्यों दबा रहा है? मैं कहता है कैसे लोग हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। और ऐसे समय पर ही मैं आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ ब्रह्मा कुमारी हमारी बहने, एंड आई लर्न मेडिटेशन। और उस जब मेडिटेशन में सीखा, मैं डेली जब वहां मेडिटेशन के लिए जाने लगा, स्पिरिचुअल नॉलेज यहां क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सिटी, यहां डेली पढ़ाया जाता है। हमारे यूनिवर्सिटी का फीस कितना है जानते हैं? यहां का फीस कितना है? यहां का फीस है 2 आना 5 पैसा, 2 आना 5 पैसा। आप कहेंगे ना तो पैसा मिलता है अभी, 5 पैसा तो कब से देखा ही नहीं हमने, आना तो कब से बंद हो गया है। भगवान ये स्थूल पैसा आपसे नहीं मांगते हैं। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर जो 5 बुराइयां हैं, मुख्य 5 बुराइयां, वो दे दो मुझे, वो 5 पैसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और 2 आना क्या है? सवेरे आना और शाम को आना। अगर सवेरे शाम 2 बार नहीं आ सकते हो, कम से कम 1 बार आना, 1 आना कम से कम। तो आज दुनिया में किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी जाइए, आप कभी भी नहीं देखेंगे 365 डेज कभी भी एक दिन छुट्टी नहीं है, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज किसने देखा है तो बताइए। लेकिन दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी जहां 365 डेज एक दिन भी छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं देखो बच्चे, तुम अगर शरीर को स्वच्छ रखने के लिए 2 बार नहाते हो, 1 बार तो कंपलसरी नहाते ही हैं हम सब, कि कोई ऐसा है 2 महीना 3 महीने में 1 बार नहाते हैं? है कोई ऐसा? यहां राजस्थान में कई ऐसा एरिया है पानी नहीं मिलता है, लोग 6-6 महीना तक बिल्कुल नहीं नहाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं ना, हमारे एक वहां सुपरवाइजर है वार्ड का, वो क्या करता है, इतना बदबू शरीर से वो वार्ड के अंदर एंट्री करने नहीं देता है। पहले कहता है बाथरूम में अंदर घुसो और नलका लेके पूरा पहले उसको एकदम नहलाता है, फिर जाके वार्ड में लेके जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम 2 बार नहाते हैं, गर्मी के मौसम में 3 बार 4 बार भी नहाते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा में जो मैल चढ़ गई है, बहुत जन्म जन्मांतर के मैल बुराइयां, इसको निकालने के लिए ज्ञान स्नान करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां भगवान हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना के जो मेडिटेशन सिखाते हैं उसमें आत्मा प्यूरिफाई हो जाती है, क्लींज हो जाती है। तो इसलिए इस रास्ते में चलने के लिए जब मैं शुरू किया, मेरे सारे दोस्त, मैं कहीं भी जाता था पहले, मेरे आगे पीछे 10-15 दोस्त होते थे कहीं भी जाओ। क्यों जानते हैं? क्योंकि कभी मैं होटल में जाऊंगा तो चाय पीना है, सबका चाय का बिल मैं दूंगा, किसी को देने नहीं दूंगा। थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगे, सबका पैसा मैं दूंगा। तो 15 लोग तो ऑटोमेटिकली आपके आगे पीछे घूमेंगे ही। लेकिन जैसे मैं गया वहां, इतना अच्छा लगा मेडिटेशन, ये सब बातें मैं सबको कहने लगा, चलो भाई देखो उधर। सभी ने कहा ये तो पागल हो गया पूरा, ये तो पागल हो गया, इसको और कुछ हो गया है, ये तो बिल्कुल ये गया काम से। आप अगर जीवन में जिस दिन लोग आपको पागल समझेंगे ना, आप समझ जाइए आप सही ट्रैक पर हो। दुनिया कहती है कि भगत पागल, भगत कहते हैं जगत पागल। हम भगवान को पाके गल हो गए, सिद्ध हो गए। आज वही फ्रेंड्स मुझे आके कहते हैं, पहले जब मैं नौकरी छोड़ के यहां आया, एक परमानेंट गवर्नमेंट जब छोड़ के माउंट आबू आया आज से 22 साल पहले, सभी ने कहा उसका क्रेक हो गया, वो तो गया काम से, वो कहीं सिटी में प्रैक्टिस करता तो लाखों रुपया कमाता, विदेश जा सकता था, कहां जाके जंगल में बैठा है। आज वही मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वही फ्रेंड्स आते हैं और मुझे देख के कहते हैं कि भाई हमारे लिए भी यहां कोई नौकरी फोकरी है क्या? भले हम पैसा इकट्ठा कर लिए थोड़ा, लेकिन जिसको देखो, किसको डायबिटीज हो गया, किसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसको थायराइड हो गया, किसको क्या, किसके बच्चे नालायक, किसको क्या ड्रग एडिक्ट, कोई क्या हालत खराब एकदम। तो जीवन में वास्तव में सफलता उसे नहीं कहा जाता है। तो भगवान से प्यार होना, भगवान जो रास्ता दिखाते हैं वही हमारा कल्याणकारी पिता है। भगवान जो भी करेंगे हमारे भला के लिए करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे, कभी भी वो हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो भगवान के राह पर चलने के लिए करेज चाहिए दोस्तों, करेज, जिसका करेज है वो चल सकता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे जो सोचा गया काम से हो। तो कहने का मतलब देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। लेकिन मैं कहूंगा जीवन में रिस्क लेना ही जरूरत ही नहीं है। रिस्क लेने का क्या जरूरत है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। एक छोटा बच्चा है, आप कहेंगे बिजनेस में तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा ही है, वो बैठना भी नहीं सीखा है, उसको एकदम कहेंगे जा दौड़ दौड़ भाग दौड़, उसको पीछे मारेंगे, दौड़ सकेगा? ही विल फॉल डाउन। लेकिन उसको आप हाथ पकड़ के धीरे धीरे बैठाना सिखाया, क्रॉलिंग कराना सिखाया, धीरे धीरे चला, धीरे धीरे चलाया, फिर एक दिन आया जा दौड़, एकदम दौड़ के कहां पहुंच जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। एक बार एकदम इतना बड़ा रिस्क लेके, एकदम आपके परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, आई नो, तो इतने सारे बहुत एकदम रिस्क। स्लो स्टार्ट, स्लोली स्टार्ट, अर्ली ड्राइव, स्लोली रीच सेफली कहावत है। तो कहने का मतलब जीवन में रिस्क की कोई बात ही नहीं है। आपके परसेप्शन, आपका कंसेप्ट, आपके अंदर के आवाज क्या कहता है, देखिए परखिए क्या राइट है क्या रंग है। अरे लोगों का काम है कहना, कहेंगे आप कुछ भी करेंगे, लोग आपको कहेंगे कुछ भी करेंगे। वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वही लोग एक दिन आपको पूजा करेंगे, मैं कहूंगा। तो कहने का मतलब है जीवन में, और एक बात, ट्रुथ, नेवर बी अफ्रेड टू स्पीक द ट्रुथ बिकॉज इट विल सेट यू फ्री। जीवन में सत्य बोलना बहुत कठिन है, कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार सत्य बोलने का, सत्य काम करने का अगर साहस हो जाए तो जीवन में सदा के लिए आप निश्चिंत रह सकते हो। आपको कोई परेशानी, टेंशन कुछ नहीं। एक झूठ बोलेंगे, हजार झूठ उसके पीछे बोलना पड़ेगा, वो जाल में आप फंस जाएंगे। इसलिए सत्य को भी अपना जीवन का साथी बनाना चाहिए। सो अनअडल्ट्रेटेड लव विथ गॉड, भगवान के साथ अनाविल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अव्यभिचारी भक्ति जिसे कहा जाता है। तो परमात्मा से जो अगर वास्तव में दिल का प्यार है तो जीवन सफल ही सफल है। एक बार एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस था यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत सारे मैनेजर गुरु आए थे, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, घंटों तक लेक्चर्स चला सभी का। वहां मदर टेरेसा को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। सी हैड ए स्पीच ऑफ ओनली टू मिनट्स। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा है, आप जितना अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को जितना प्यार करते हो, आपके कंपनी में या आप जहां भी काम करते हो, अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को इतना प्यार देते हो। सी ऑल टॉक्ड, यस यस यस, यू कैन हैव ए क्लैप। जीवन में तब आप सफल बन सकते हो जब आप सभी को इतना प्यार लुटाओगे, नहीं तो यू विल नेवर बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन योर लाइफ। उसका सार एसेंस यही शब्द में बोला, 2 मिनट में ही सिर्फ बोला कि प्यार प्यार प्यार, जस्ट यू लव एवरीबॉडी, अनकंडीशनल लव टू एवरीबॉडी। लास्ट में जब कॉन्फ्रेंस का असेसमेंट हुआ, सबका बढ़िया से बढ़िया स्पीच किसका था, 99% लोगों ने, घंटों तक कई मैनेजमेंट गुरु आए, सब क्या क्या बोल के गए, लेकिन 99% लोगों ने कहा जो मदर टेरेसा ने कहा वो सबसे बेस्ट स्पीच था। तो देखिए, इट इज इजी टू लव द पीपल फार अवे, दूर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ प्यार रखना सहज है, बट इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू लव दोज क्लोज टू अस, हमारे अड़ोस पड़ोस में आगे पीछे जो रहते हैं, उनको प्यार करना इतना आसान नहीं होता है। ब्रिंग लव इन टू योर होम, फॉर दिस इज वेयर आवर लव फॉर ईच अदर मस्ट स्टार्ट। अगर हम अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकते, हमारे परिवार के सदस्यों को प्यार नहीं लुटा सकते हैं, दुनिया को क्या लुटा सकते हैं। इसलिए आवर लव शुड स्टार्ट इन आवर फैमिली इटसेल्फ। तो प्यार, देखिए, इफ यू जज पीपुल यू हैव नो टाइम टू लव देम। जीवन में देखो, भगवान को सभी हम इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान प्यार से आज सारी दुनिया में, हमारे विश्वविद्यालय में, देखिए आज दुनिया में ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसका ब्रांचेस 140 कंट्रीज में हो। देर आर 9000 ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 140 कंट्रीज, और जहां 20,000 से भी ज्यादा डेडिकेटेड सिस्टर्स हैं जो एक पैसा नहीं मांगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी नहीं लेते हैं। 20,000 से भी ज्यादा ऐसे सिस्टर्स हैं, दोज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर द इंस्टीट्यूशन, फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड, होल लाइफ दे हैव डेडिकेटेड, देयर इज नो रिटायरमेंट एज। ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपने देखा है तो, सुना है तो बताइए मुझे हाउ इट इज रनिंग, एंड सभी एक हैं, हमारी दादी 98 इयर्स ओल्ड, हमारी जानकी दादी जी 98 इयर्स में, कैन यू बिलीव, सवेरे सवेरे ईमेल खोलती है, जवाब देती है. एट दिस एज ऑल्सो सी इज ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सी वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड. अमेरिका में 10 साल पहले उनको एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में जब उनका टेस्ट किया गया, देखा गया है, बहुत सारे मेडिटेटर्स को बुलाया गया था, सबका ईजी ब्रेन वेव पैटर्न स्टडी किया गया, देखा गया सी वॉज द मोस्ट स्टेबल माइंडेड. तो कैसा संभव है, कौन सिखाता है, कौन सिखा रहा है? मेरे दोस्तों, ये सब डिवाइन इंटेलेक्ट की कमाल है. आज समग्र विश्व में, आज यहां देखिए 20,000, आप तो थोड़े 500-600 ही आए हो, आप और कुछ महीने के बाद आप देखना हमारे शांतिवन में, एवरी 15 डेज में 20,000 पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 20,000, 25,000 पीपुल विल कम, और सभी वहां खाते हैं, पीते हैं, कोई शोरगोर नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं. कैसे आता है, कैसे जाता है, कहीं आपको पेमेंट करना नहीं, कुछ नहीं. कहां से आ रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे चला रहा है, पीपुल आर सरप्राइज्ड. कौन मल्टीनेशनल कंपनी जैसा है दुनिया में जो कर रहा है, बताइए. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज विद द पावर ऑफ लव ओनली. हमारी दादी एक एक को जो प्यार देती है, वो दिल से कुर्बान हो जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार है. यहां कोई सैलरी के आधार से नहीं चलता है. हमारे ज्ञान सरोवर में इतने भाई बहन जो इस तरह संभाल रहे हैं, जो दी नीटनेस, दी क्लीनलीनेस, दी वे दे आर डूइंग, दे आर नॉट पेड सर्वेंट. हु इज डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, दिस इज द मैजिक ऑफ लव ओनली. तो प्यार से हम क्या नहीं कर सकते हैं. तो आप जीवन में सफल बनना चाहो तो अनकंडीशनल लव लुटाओ, सबको प्यार दो, देखो सब अपने हो जाएंगे, आपको सब सहयोगी बनेंगे. तो इसलिए लव, लव एंड लव. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड. इफ यू कंपेयर, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ. दुनिया में सभी अलग अलग, सबकी विशेषता अलग अलग है, अपने अपने हैं. नोबडी इज इंफेरियर, नोबडी इज सुपीरियर. मैं आपको कहूंगा, एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट्स, बहुत अच्छा, लेकिन वो हॉस्पिटल में 5 दिन तक कोई स्वीपर नहीं आए, चलेगा हॉस्पिटल, चलेगा? तो फिर कैसे, क्यों नहीं चला, इतना बढ़िया हॉस्पिटल तो है. तो दुनिया में किसी का भी रोल इंफेरियर नहीं है दोस्तों, हर एक का. नो बडी कैन प्ले योर रोल बेटर देन योर सेल्फ. दुनिया में आप अपने को बहुत स्पेशल समझिए. आप जो हो, जैसे हो, आपका रोल दुनिया में कोई नहीं निभा सकता है. यू आर यूनिक, यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ. मैं आपको कहूंगा, आप अगर यही बात भूल जाते हैं, अरे मैं ऐसा हूं, व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स, देन ओनली जीवन में हम डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. तो कभी भी जीवन में कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा. इफ योर आइज आर पॉजिटिव, यू वुड लाइक ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. आपके दृष्टिकोण अगर अच्छा है, सभी अच्छे लगेंगे. आपके अगर देखना के तरीका, सबको अच्छा देखेंगे, सब अच्छे लगेंगे. बट योर टंग्स, योर वर्ड्स आर स्वीट, योर टंग इज पॉजिटिव, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड विल लव यू. अगर अच्छा बोलेंगे, दुनिया में ऑटोमेटिकली सभी मनुष्य आपको प्यार करेंगे. तो जीवन में प्यार देना, प्यार लेना, यही मंत्र है सक्सेस होने के लिए. सो आर यू स्ट्रेसफुल? क्योंकि जीवन में अभी देखा गया है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक दुनिया में सब कोई स्ट्रेसफुल है. और स्ट्रेस इज द नंबर वन प्रॉक्सी किलर बिहाइंड ऑल द डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर. सारी बीमारियों का जड़ दोस्तों टेंशन है, स्ट्रेस है. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक स्टडी कंडक्ट किया गया, 60% ह्यूमन इलनेसेस आर ड्यू टू स्ट्रेस. तो तनाव आपके जीवन में आके घेरा तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस ड्रेन्स अवे योर मेंटल एनर्जी, आपकी सारी शक्तियां ये नष्ट कर देती है. इसलिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? जीवन में वास्तव में जो बैलेंस रखना जानता है, वो कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं होता है. द बैलेंस, इट इज द आर्ट. लर्न द आर्ट ऑफ कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ. मैं तो आई सैल्यूट ऑल द वर्किंग लेडीज, वर्किंग मदर्स, दोज हु कीप अ बैलेंस ऑफ देयर पर्सनल लाइफ, देयर फैमिली लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ, देयर प्रोफेशनल लाइफ. तो जीवन में बहुत बातों का बैलेंस रखना पड़ता है. जो बैलेंस रख के चलता है, लोग ताली बजाते हैं. जो गिर पड़ता है, हड्डी पसली चकनाचूर. तो जीवन में जो बैलेंस रखता है वही उसका जीवन ही ब्लिसफुल होता है, आनंदमय हो जाता है. जो बैलेंस रखना जानता है, वही भगवान के ब्लेसिंग, सबसे ब्लेसिंग्स प्राप्त करता है. इसलिए जीवन में बैलेंस जो जानता है, वही जीवन में टेंशन नहीं पाता. कभी भी जीवन में स्ट्रेस टेंशन नहीं होगा. सो कहावत है, बैलेंस इज ब्यूटीफुल. तो लाइफ इज अबाउट बैलेंस. टू मच एंड टू लिटिल कैन किल. कोई भी चीज अति मात्रा में वो हमारे नुकसानकारक है. और द बेस्ट वे टू बैलेंस लाइफ इज सेटिंग बाउंड्रीज एंड लर्निंग टू से एनफ. तो टू स्टॉप स्ट्रेस फ्रॉम इन्वेडिंग योर बॉडी एंड माइंड क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? अगर आप स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आपको दो गोली दे देंगे, आप सोते रहोगे, जैसे उठोगे फिर वही हालत. तो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव मुक्त होने के लिए एक ही दवाई है, वो है मेडिटेशन, जो इस विश्वविद्यालय में आपको फ्रीली दिया जाता है. मेडिटेशन सीखिए. मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं, मैं आज से जब सीखा मेडिटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, आज तक इतनी सारी सेवाएं करनी पड़ती है. यू कम टू ग्लोबल हॉस्पिटल, आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट्स. मेरे परिचय में बताया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनेस्थेसिया ऑल्सो. और दुनिया में सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है एनेस्थेटिस्ट का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं एनेस्थेटिस्ट. किसको बेहोश करना इतना आसान नहीं है, 8 घंटा 10 घंटा तक बेहोश करके रखो, फिर वो सही सलामत सब कुछ ठीक ठाक होके उठे, इतना सहज नहीं है. आप सुनते होंगे अखबारों में एनेस्थेसिया के कारण कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं यहां सिंगल हैंडेड 15 साल तक एक दिन भी, मेरे सीनियर नहीं जूनियर नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया 14 साल तक, ना सीएल ना ईएल ना सिक लीव ना कुछ, 24 आवर्स ऑन कॉल रह के मैं किया. हाउ इट इज पॉसिबल. एंड आई एम नाउ एक्चुअली आई सॉ द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज एवरी फैमिली. आप सिटीज में जाइए देखिए, घर घर में डायबिटीज हो गया है. आई लॉस्ट माई ओन अंकल, उनका टांग काट दिया गया, ही डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशन. आई लॉस्ट माई ओन कजिन. नथिंग डूइंग, कोई एनेस्थेसिया तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सारे देश भर में जो समस्या है अभी, घर घर में डायबिटीज है, इसके लिए मुझे कुछ करना है. तो आई हैव इन द लास्ट वन ईयर आई ऑर्गेनाइज अबाउट मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कैंप्स, जहां के हजारों लोग आते हैं, जहां मैं किसी भी सिटी में एवरी वीकेंड में किसी ना किसी सिटी में है. इस वीक नहीं गया क्योंकि आप सभी से मिलना था, नहीं तो एवरी वीकेंड में मैं कहीं ना कहीं होता हूं और हजारों लोगों को बताता हूं क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे जीना, क्यों ये बीमारी हो रही है. जो गलती आप किए जिसके कारण आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वही गलती आपके बच्चे करेंगे. तो आपको 50 साल में हुआ तो आपके बच्चों को 30 साल में होगा. तो ये सारी बताता हूं. तो कहने का मतलब प्रैक्टिस मेडिटेशन. देखिए दुनिया में सब पैसा के पीछे पागल है. मनी मनी मनी, बेटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी. लेकिन किसने एक मनी को पूछा, अरे रुपया, आई मेट मनी एंड आस्ट, व्हाई एवरीवन राउंड्स बिहाइंड यू, यू आर जस्ट ए पीस ऑफ पेपर ओनली. मनी को किसने पूछा कि तू, आप तो एक जस्ट पेपर का टुकड़ा है, आपके पीछे लोग क्यों पागल है? तो उन्होंने कहा, यस ऑफ कोर्स आई एम ए पीस ऑफ पेपर, बट आई हैव नेवर सीन ए डस्टबिन इन माई लाइफ. कभी कोई मनी को डस्टबिन में डालता है? तो दोस्तों कहने का सार है, अपना जीवन को कभी भी डस्टबिन मत बनाइए. जीवन में सब उल्टा सुलटी बातें सब हम डाल के जीवन को डस्टबिन बनाते हैं, तो ही हमारा जीवन वैल्यूलेस हो जाता है. तो हमारी दादी पूछती है, डू यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? हमारी दादी जानकी जी जो कि 98 ईयर्स ओल्ड बता रहे थे, वो पूछती है, डू यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? देन फॉलो दी फादर. यहां फादर मीन्स परमात्मा, जो हम सभी के पिता हैं, वो जो बातें हमें बताते हैं, जो गाइड कर रहे हैं, वही सतगुरु है, वही मार्ग प्रदर्शक है, जिनको हम आज तक प्रार्थना करके आते थे, वही हमें रास्ता दिखाने आए हैं. कहते हैं, मेरे बच्चे मैं जो तुमको राह दिखाता हूं उस रास्ते पर चलो, देखो तुम्हारे कदम कदम में सफलता तुम अनुभव करोगे. और साथ में और क्या करना है, इफ यू वॉन्ट टू रियली वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, देन डोनेट हैप्पीनेस. खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दवाई नहीं, इसलिए खुश रहो, खुश बांटो, खुशी बांटो. जीवन में देखिए आप खुशहाल हो जाएंगे. आपको देखिए दोस्तों, जो खुश रहता है उसके ब्रेन में एकदम एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स हैं. आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी. जो खुश नहीं रहता है, हम खुशी जीवन में खो दिए, जिसके कारण ही सब बीमार ग्रस्त हो गए. तो खुश रहो. और यहां भगवान हमें रोज खुश रहने की तरीका हमें सिखाते हैं, तो इसलिए गुड लक. And did you smile today? Did you smile today? Yes, thank you. So, thank you very much. Have a nice day. एक बहुत एक सुंदर गीत बजाऊंगा अभी. आप सभी गीत सुनना अच्छी तरह से, एक एक शब्द सुनने लायक है, सुनिए. और लास्ट में उस गीत के कुछ ऐसे स्टांजा है जो आप दोहरा भी सकते हो उसको। तो अभी एक सुंदर गीत बजेगा, वो गीत का आप कुछ शब्द है इतना सुंदर है, मेरे साथ आप गाएंगे, ठीक है? अभी सभी दो मिनट भगवान को याद करते हैं, जो हमें जीवन में सदा सफलता के सितारे बनने के बनाने के लिए आए हैं उनको याद करेंगे। दो मिनट
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बनोगे,
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बनोगे,
जितना मीठा बोलोगे उतने मीठे बनोगे।
ये राज है जीवन का, ये साज है मन का,
ये राज है जीवन का, ये साज है मन का।
जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे बनोगे। दुनिया में आए थे जब हम, क्या लेकर आए थे?
दुनिया में आए थे जब हम, क्या लेके आए थे?
जाएंगे जब दुनिया से तो सोचो क्या लेके जाएंगे।
फिर मेरा मेरा क्यों करते हैं, क्या इसी से झोले भरते हैं?
फिर मेरा मेरा क्यों करते हैं, क्या इसी से झोली भरते हैं?
जितनी खुशियां बांटोगे उतना सुखी बनोगे,
जितना सफल करोगे उतना सफल बनोगे।
ये राज है जीवन का, ये साज है मन का, ये राज है जीवन का, ये साज है जीवन का।
तो यही जीवन का साज है दोस्तों, यही मन का राज है। तो जीवन में खुश रहो, खुश बांटो, अच्छा बोलो, यही भगवान हमें सिखाते हैं। देखिए जीवन में आप सफल हो ही, यहां से आप सफलता के सितारे बन के चमक के जाएंगे, ये मेरी पूर्ण विश्वास है। और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, सारा जीवन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, फुर्त रहें। ओम शांति।